19वां पारा। इस पारे के मौजू की बुनियाद हज़रत इब्राहीम की अपने रब के साथ की हुई वो खूबसूरत बातें हैं जिनको पढ़ते वक्त ख्वाहिश होती है कि अल्लाह हमको भी इसी तरह से बात करने का सलीका सिखा दे। यानी हज़रत इब्राहीम के मैनर्स और एटिकेट्स विद अल्लाह सुबहाना ताला। फिर अदब के बारे में जो हमने बातें पढ़ी थी, अदब का ताल्लुक इंसान की फितरत से है, यानी फितरतन इंसान बाअदब बना है। ये अलग बात है कि फितरत मसख हो जाए तो बेअदबी शुरू हो जाती है। इंसान दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक फितरत और दूसरी जबिल्लत। फितरत दानिशमंदी है जिसका ताल्लुक इंसान की सब बोलिए सोच से है। आधा जुमला मैं बोलूँगी, पूरा आप करेंगे। अल्लाह ताला जब किसी को दुनिया में भेजते हैं तो वो फितरत के अंदर अदब लेकर आता है। इस अदब की अगर अच्छे तरीके से परवरिश की जाए तो इंसान बहुत। जिन बच्चों को बचपन से अदब सिखा दिए जाते हैं वो बाद में भी लोगों के साथ अच्छा अखलाक बोले। अखलाक कोई लफ्ज़ नहीं है अरबी में, बोलिए अखलाक बरतते हैं। फिर उसके बाद देखिए हमारे अदब का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है। सबसे पहले अल्लाह के साथ अदब। अल्लाह ताला के साथ अदब यह है कि इसके साथ किसी को। दूसरा अदब क्या है कि अल्लाह से इतना डरना चाहिए जितना उससे डरने का। तीसरी चीज़ अल्लाह अकबर कहें, यानी अल्लाह को सबसे। अगली नमाज में खुशू के साथ खड़ा होना। अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा तारीफ और तस्बीह, ये अगली कड़ी हमने पढ़ी। ये तो रीकैप हो रहा है ना, सिर्फ खुलासा है। अल्लाह के नाम पर झूठी। अल्लाह का नाम लेकर किसी अच्छे काम से ना रुके। मसलन किसी की शादी कराई या बाप को बातें सुननी पड़ी, आप कसम खाते हैं मैं आज के बाद किसी का रिश्ता नहीं करवाऊंगी, ठीक है। अगला अदब के अल्लाह के साथ कि अल्लाह के नामों को वसीला बनाकर, जैसे ठीक है। नेक्स्ट अदब अल्लाह ताला से अल्लाह का नाम लफ्ज़ चीज़ों पर शऊर से। सजदे में जितना अल्लाह का अदब आएगा इसका असर इंसान के। चलिए दूसरी चीज़ अदब में क़ुरान पाक का अदब क्या है। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी और गौर से सुने। नेक्स्ट ऐसी महफिलों की कदर की जाए जहाँ बेतरतीब और बेदिली से वहाँ उठ के चला जाए। फिर जी क़ुरान की बात करने वाले को बीच में किसी महफिल में बैठते हुए हर उस चीज़ से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए जो आपको क़ुरान से। मसलन जी लेंगे, कितने लोग हैं जो मोबाइल के बगैर एक घंटा जी सकते हैं। किसी ने एक वीडियो भेजी थी कि एक दोस्त दूसरे को चैलेंज करता है कि 8 घंटे तुमने फ़ोन नहीं उठाना। खैर वो उसके घर के चुपके से कैमरा लगाया और कैमरे से वो घर में जो कुछ हो रहा है उसको देख रहा है। उसके बाद उसको अपने पास ले आता, वहाँ उसका फ़ोन सामने रखा है और उसको कहता है अगर 8 घंटे तक तुम फ़ोन नहीं सुनते नहीं उठाते तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा। उसने कहा ये तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, 1 करोड़ तुम दोगे। उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम रुक नहीं सकोगे। इसने कहा नहीं कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो वैसे ही घर वालों के फ़ोन कोई नहीं उठाता। और जी और वो उसने कहा ठीक है। उतने में वो टीवी खोल के बैठ जाते हैं जिसमें उनको उसके घर की सारी वीडियो दिख रही है कि घर में क्या कुछ हो रहा है और ये यहाँ बैठा हुआ है। तो वो साथ ही टाइमर चल रहा है, 8 घंटे हैं अब 7:30 रह गए हैं। बच्चा कह रहा है अब्बू अभी आए नहीं, उन्होंने तो मुझे होमवर्क कराना था। तो ये इसका दोस्त इसको देखता है तो ये इसको कहता है कि नो प्रॉब्लम, मैं बच्चे को सुबह होमवर्क करा लूँगा। यानी ये शो करा रहा है कि इट्स ओके आई डोंट केयर। फिर थोड़ी देर बाद उसकी बीवी कहती है आज ये वापस नहीं अभी आए, ये है वो है। वो फ़ोन करती है, इसके फ़ोन पे बेल भी होती है, ये नहीं उठाता, इट्स ओके। फिर माँ का दिखाता है, यानी किस्सा मुख्तलिफ टाइमर पे चलते चलते एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बढ़ता जा रहा है और ये फ़ोन नहीं उठाता। घर वालों को देख रहा है, फिर उसके घर वाले परेशान होना शुरू हो गए हैं। फिर माँ कहती है इसने तो मेरी दवाई लानी थी। वो कहते ओहो उसकी दवाई तो मेरे बैग में। करते कराते सारी बातों के बाद सिर्फ 1 घंटा रह जाता है आखिरी। अब घर वालों का इस्तराब है, बीवी माँ के लिए दवाई ऑर्डर करती है, दवा लेके जो आता है वो कहता है पैसे दो, कहती घर में तो कैश ही नहीं है। ये कहते ओहो मैं तो घर में कैश ही नहीं लेके आया। वो जो दुकानदार है वो कहता है चलो आओ ATM से मुझे पैसे निकाल दो। अब फिर इसको एकदम बेचैनी होती है, इट्स सो डेंजरस कि मेरी बीवी गैर बंदे के साथ रात को एटीएम मशीन ऑपरेट करे, करते कराते बहरहाल एंड पे दिखाते हैं कि 45 मिनट रह गए सिर्फ, और इसकी बीवी परेशान है, घर में एक दो लोग परेशान है, एकदम इसकी बीवी बेहोश होने लगती है कि पता नहीं उसको क्या हो गया, क्योंकि इसका फ़ोन डेड हो जाता है इस दौरान। वो बीवी फ़ोन करती है तो उसमें आ रहा है कि वो ऐसी जगह पे है जहाँ फ़ोन नहीं सुन रहे। अब ये सुन के वो एक किस्म की गिरने लगती है, अब ये अपना फ़ोन उठा के भाग। इसका दोस्त कहता है देखो 45 मिनट रह गए हैं सिर्फ, कहता आई डोंट केयर, मेरी बीवी मर जाएगी। फिर ये वापस घर जाता है, यानी अपनी 1 करोड़ रुपया छोड़ के तो अपने बीवी बच्चों और माँ के पास चला जाता है। मुराद क्या था कि हम अपने घर वालों से दूर नहीं रह सकते। तो सोचिए कि आज आप हैं और फ़ोन नहीं उठा रहे, तो एक दिन होगा कि आप नहीं होंगे, तो फिर आपके घर वालों का क्या होगा। तो याद रखिए कि ज़रूरत की चीज़ों को तईशात में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। पहली बेल पे फ़ोन उठाना लाजमी है। ये जो कॉलर आईडी आ जाती है, और आप तो देखिए कि आप फ़ोन करें या दूसरा करें सब बराबर है ना। पहले तो लोग इसलिए भी उठा लेते थे ना, उठा लो नहीं तो मुझे करना पड़ेगा, मेरे मिनट ज़ाया होंगे। तब तो वो भी नहीं रहा, व्हाट्सएप की मोस्टली फ्री कॉल्स लोग करते हैं। तो किस्सा मुख्तर ये कि कुरान की क्लास में आते हुए अपने फ़ोन को बंद करके साइलेंट मोड में डाल दें। जैसे फ़्लाइट टाइम के बीच में बाहर कोई मर भी जाए तो आपको खबर नहीं होती, ऐसे ही है ना। तो अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो, लेकिन ऐसे मौक़ों पर फ़ोन को बार बार चेक करना ये कुरान की बेअदबी है। चलिए अगली चीज़, इंसानों में सबसे ज़्यादा अदब का मुकाम, आपके अदब का ये तकाजा है कि आपका नाम सुनते ही अल्लाह के नबी की हदीस को सुनकर चुप हो जाएं, ना राय दें ना। नबी सल्लम का अदब यह है कि सुन्नतों का चाहे छोटी हो या आपकी सीरत को पढ़ा जाए और इसके अंदर से अपने लिए, इसके बाद इंसानों में बड़े मुराद एल्डर्स। कुछ लोग कहते हैं ना बड़े लोग आए हैं जी, आप तो बड़े लोग हैं, तो बड़े तो नहीं होते, उनका कद उतना ही होता है जितना हमारा होता है। तो कुछ लोगों को हम बड़े लोग किस वजह से कह देते हैं, पैसे और उनकी बड़ी गाड़ी की वजह से। तो असल में बड़े कौन है, जो कि उम्र में रुतबे में थे। चलिए बड़ों का जो इल्म में बड़ा हो उसकी, चाहे वो उम्र में हमसे, जो उम्र में बड़े हो इनका एहतराम भी किया जाए। मसलन अपने बच्चों को सिखाएं कि वो मुलाजिम के साथ, जो रुतबे में आपसे बड़े हैं जैसे माँ बाप या मालिक, इनकी इज्जत अफजाई के लिए खड़ा होना, इसमें एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमाया क्योंकि सिर्फ नमाज में खड़ा हुआ जाता है और नमाज इबादत का हिस्सा है। बड़ों की बातों को काटना नहीं चाहिए। बड़े एक बात को बार बार करते हैं, इस पर किसी जगह अदब भी है और हुक्म भी है, ऐसे वक्त में क्या किया जाएगा। चलिए अगला अदब है लॉ को फुलफिल करना। कानून को हर जाविये से लें, शरीयत का अदब करें, क्योंकि कुरान में इसमें मुल्कों के ट्रैफिक के कवानीन से लेके तमाम कवानीन का अदब सिवाय मेरे, ये तो नहीं कह रहे दिल में, हर एक पे है। ठीक है चलिए, खालिद बिन वलीद हज़रत अली बहादुर थे, लेकिन जहाँ रुकना होता, मतलब बहादुर तो थे लेकिन अल्लाह के नबी के हुक्म से आगे नहीं बढ़ते थे। हज़रत उमर बड़े गुस्से वाले थे लेकिन अल्लाह के नबी के सामने और कानून के आगे। सुलह हुदैबिया के मौके पर सहाबा कराम ने इंतहाई और अदब का, अल्लाह ने कवानीन दिए, पूरी कायनात कवानीन को मान रही है। अदब के दो पहलू हैं, एक ज़ाहरी और दूसरा ज़ाहरी पहलू हरकात को देखता है आप कैसे, दूसरा बातनी पहलू है इसको दिल की हालत से मामूर कर सकते हैं। चलिए सूरत फुरकान 21 में अल्लाह के मामले में लोगों की आयत 20 में अहले, आयत 25 से अगली चंद आयात में क़यामत के कुछ मंजर हैं। आयत 27 में रसूलुल्लाह का साथ ना देना रसूलुल्लाह के साथ बेअदबी है। آیت 30 میں غور طلب بات ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو یہ سوچ کر زندگی گزار رہے ہیں کہ رسول نے ہماری سفارش کرنی ہے اور ہم اللہ کے نبی کا پلو تھام کر. آیت 35 سے اگلی چند آیات میں انبیاء کرام کے، اس پورے پارے میں نبی کے ساتھ بے ادبی اور بدتمیزیوں کی مثالیں نظر آتی ہیں. آیت 40 میں قوم لوط کی طرف اشارہ ہے کہ ان پر پتھروں کی بارش. اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی. آیت 43 ہم سب کو میں کے لیول پر. آیت 44 میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ کے دین کو نہ سنتے ہیں اور نہ ان کی مثال. آیت 45 سے 47 میں دیکھتے ہیں کہ سورج کے اٹھنے اور بیٹھنے کی. اگلی آیات میں بادلوں اور بارش کا. اگلی آیات میں جہاد کبیر کی بات ہے، یہ وہ جہاد ہے جو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ہی یعنی آپ کا شروع ہو چکا ہے یہ کہہ لیجئے. آیت 60 سے اگلی چند آیات میں عباد الرحمن کی. چلیے سورت شروعات ہے، یہ وہ جہاد ہے جو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ہی یعنی آپ کا شروع ہو چکا ہے یہ کہہ لیجئے. آیت 60 سے اگلی چند آیات میں عباد الرحمن کی. چلیے سورت شورا، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ہر حکم بڑا واضح. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی جان کھو دیں گے اس غم میں کہ لوگ. اور آیت 5 نے ہمارے لیے محاسبے کا نقطہ ہے کہ قرآن کی دعوت کو ہم کتنا سنجیدہ لیتے ہیں. چلیے آیت 13 میں حضرت موسیٰ کا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ادب. آیت نمبر 18 سے 68 میں انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے اندر. آیت 69 سے چند آیات ابراہیم کا ادب نظر آتا ہے، خاص طور پر اپنی قوم کے سوال جواب میں. آگے دیکھیے آیت نمبر 210 211 میں مکہ والے آپ پر الزام لگاتے تھے کہ جبرائیل کی بجائے آپ کے پاس. آیت 214 میں کہا گیا کہ یہ دوسری وحی تھی کہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو. آیت 221 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں. 224 آیت میں ایسے شاعروں کے بارے میں بتایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف باتیں کرتے ہیں. سورت نمل میں دو دفعہ. آیت 2 میں خدم و بشرا کے یہ لفظ آئے، تو قرآن سے کب ہدایت ملتی ہے؟ جب اس کو، اور قرآن بشرا کب ہوتا ہے؟ جب اس پر. شاباش. آیت 4 اور 5 میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو آخرت پر یقین. اگلی آیات میں حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ سے کتنا پیار ہے. آیت 7 سے 14 میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھا رہے ہیں کہ فاسدوں کا انجام اور ان کا حشر. اور ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ خط لکھتے ہوئے بسم اللہ کے بعد اپنا نام. الحمدللہ. چلیے آیت 45 سے قوموں کے. آیت 45 اور 46 میں حضرت صالح کا ایک ناسخ کے طور پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے رکھی ہیں تمہیں اپنے وقت پر مل کر رہیں گی، تم صبر کیوں نہیں کرتے. آیت 54 سے حضرت لوط کی کہانی شروع ہوتی ہے. آج کے دور میں جس کو جدت پسندی اور انسانی حقوق کہا جا رہا ہے، حضرت لوط اسے آج کے دور میں بڑے خوبصورت نام لے کر اکثر چیزوں کو جائز قرار دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب. اللہ اکبر. یہ جو محاسبہ شیٹس ہیں نا، یہ آپ کا نام اعمال بنے گا کل. یو سی کی ایک دنیاوی شکل ہے. آج تو آپ اور میں چینج کر سکتے ہیں، انڈو کر سکتے ہیں، لیکن کل نہیں کریں گے. چلیے جیمز آف دی پارا، یاد رکھنے کی باتیں. قیامت کا دن لمبا ہوگا لیکن مومن دوپہر کا کھانا. دینی شعار کا مذاق اڑانا بڑی. بارش کا پانی پاک اور بابرکت ہوتا ہے، شفا کا باعث ہوتا ہے، دعاؤں کی تو بارش ہو تو بارش میں دعائیں مانگا کریں، اس کے پانی کو پیا کریں. جہاد کبیر قرآن کی تعلیم سے اپنے گناہ دوسروں کو، کائنات بہترین ٹیم ورک کی، دن بھر کی مصروفیات رات کی عبادت پر، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک، گھر والے بھی ٹھنڈک کا، سورۃ شعرا موسیٰ علیہ السلام کا ادب اللہ کے سامنے، دین کا کام بوجھل لگے تو پیچھے نہ ہونا کسی سے، انسان اپنی گفتگو سے قرآن سے جڑ جائیں اور اصلاح کریں تو گناہ، گستاخ قومیں لوگ نہ مانیں تو اللہ سے، سب رسولوں کی دعوت، رحیم رب کا عذاب، وجہ گستاخی قوموں کی. سورت نمل میں دو میں ہدایت کیا ہے؟ خط لکھنے کا اسلامی طریقہ، بسم اللہ اوپر، اپنا نام دونوں کو یعنی اس کے ساتھ ہی لکھنا ہوتا ہے. گناہوں کی معافی طلب کریں تو اللہ کی رحمت ملتی ہے. آج کے چند نقطے ہیں. دین اسلام نے اخلاق کو دینداری، تقوی اور پرہیزکاری کا محور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اخلاق حسنہ سے، قرآن کریم نے خود انک لعلی خلق عظیم یعنی آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر. ہوم ورک کیا ہے؟ سب سے اچھا اخلاق ہمارا کس کے ساتھ ہونا چاہیے اور کیوں؟ شروع سے آخر تک جو پڑھا ہے اس کو سامنے رکھ کے لکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پہ 19واں پارہ پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.